नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सर्वोदय विद्यालय में 1100 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दिल्ली में 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के अंतर्गत तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुकुल परंपरा को भारतीय संस्कृति की आधारशिला बताया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विश्व क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शालीमार बाग स्थित सर्वोदय विद्यालय में कन्या पूजन कर कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाली 1100 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां घर की रोशनी, संस्कारों की धारा और भविष्य की सबसे सुंदर आशा होती हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए आवागमन को सुगम बनाना है।
इस विद्या वाहिनी के माध्यम से साइकिल हर बच्ची को जो 9th क्लास में आ रही है उसको देंगे, ताकि वो 9th, 10th, 11th, 12th अपना पूरा स्कूल का जो समय है साइकिल के माध्यम से वो आना जाना कर सके। कई बार घर के नजदीक नहीं होता है स्कूल, ये सारी परेशानियों को हटाते हुए हमारी हर बच्ची को एक बड़ी उड़ान वो कर सके, उसके पंखों को मजबूती देते हुए मैं इस योजना को लेकर के आई हूँ।
राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अशोक विहार में स्थित राम मंदिर, लोधी रोड पर स्थित दक्षिण भारतीय शैली के राम मंदिर, द्वारका सेक्टर 7 में स्थित श्री राम मंदिर सहित कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं राजधानी के अलग अलग हिस्सों में इस अवसर पर शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रदेशवासियों को राम नवमी की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन धैर्य, त्याग, तपस्या और लोक कल्याण का अनुपम आदर्श है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन त्याग, तपस्या और संयम का अद्वितीय उदाहरण है। दिल्ली में 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये जानकारी अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, हजरत निजामुद्दीन, सब्जी मंडी, सफदरजंग, तिलक ब्रिज, आदर्श नगर, बिजवासन और नरेला रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर प्रतीक्षालय केंद्र क्षेत्र का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पहाड़गंज की ओर बेसमेंट निर्माण और एलिवेटेड रोड के फाउंडेशन का काम जारी है। अन्य स्टेशनों की प्रगति का ब्यौरा देते हुए राजधानी के स्टेशनों में निर्माण की भी उन्होंने जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर पहुंच, दोनों ओर से कनेक्टिविटी, प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय और पेयजल समेत यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकास कार्य जारी हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय राजधानी को वैश्विक फिल्म केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फिल्म महोत्सव का उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करना, नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना और रचनाकारों को एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल महोत्सव में दिल्ली आईडीएफ के रेड कार्पेट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की 130 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जो भारत के वैश्विक सिनेमा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महोत्सव के अंतर्गत निःशुल्क सार्वजनिक स्क्रीनिंग, चर्चाएं, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह 31 मार्च को होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन www.nabharat.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजधानी के टटेसर गांव स्थित अर्ष गुरुकुल में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लिया और नवनिर्मित यज्ञशाला तथा छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गुरुकुल परंपरा को भारतीय संस्कृति की आधारशिला बताया। एक रिपोर्ट।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में जब समाज तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में गुरुकुल जैसी संस्थाएं भारतीय परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने गुरुकुल परिसर, गौशाला और योग साधना का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी विशेष बल दिया जाता है। श्री गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, दीक्षांत के बाद वह जीवन के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों से गुरुकुल में प्राप्त संस्कारों को जीवन में अपनाने और समाज सेवा में योगदान देने का आह्वान किया। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में राष्ट्रीय जनसंख्या प्रबंधन नीति लागू करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में श्री खंडेलवाल ने कहा कि भारत इस समय एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी मोड़ पर है। उन्होंने कहा कि देश की 1 अरब से अधिक जनसंख्या यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधित की जाए तो आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला बन सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले स्थलों की पहचान की है। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के अवसर पर अभिनेता आमिर खान से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सड़क डिजाइन और सुरक्षा में सुधार के लिए 40,000 करोड़ रूपये से अधिक व्यय हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 350 चिन्हित ब्लैक स्पॉट में से लगभग 280 में सुधार किया जा चुका है।
रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां थी, हम लोग उसको पूरी तरह सुधार कर रहे हैं और जो अनेक एक्सीडेंट होते हैं उसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं और हमने वो आइडेंटिफाई किए और अभी हमने 40,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किए हैं। जो लैंडस्लाइड्स होती है जैसे हिमालयन टेरेन में, उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर में, वहां हमने 350 ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए, उसमें से 280 स्पॉट को हमने वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया, वो भी इम्प्रूव किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए यह हवाई अड्डा प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा और इससे सुगमता से विदेशों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर निस्तारण किया है। एनसीबी के अनुसार इस दौरान लगभग 408 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 212 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कोडीन आधारित कफ सिरप की सैकड़ों बोतलें भी नष्ट की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में लगभग 1,700 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। एजेंसी ने दुबई में 18 और नई दिल्ली में 2 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिनमें दुबई हिल्स एस्टेट, बिजनेस बे, एसएलएस होटल एंड रेजिडेंस और बुर्ज खलीफा में स्थित आलिशान विला और अपार्टमेंट शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरे आईसीसी विमानन और पर्यटन शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि शहर को आकार देने में सुगम बुनियादी ढांचा और कुशल प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक रिपोर्ट।
श्री आशीष सूद ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार 8वें वर्ष भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, जो शहर के बढ़ते वैश्विक मानकों को दर्शाता है। उन्होंने इस वर्ष के दिल्ली बजट को विकसित राजधानी का विजन बताया। उन्होंने कहा कि परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12,600 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बेहतर यातायात प्रवाह, बेहतर फुटपाथ, स्मार्ट ड्रेनेज और हरियाली पर ध्यान देते हुए 750 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि QS टॉप 50 विषय रैंकिंग 2026 में देश के प्रमुख संस्थानों का प्रदर्शन भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये रैंकिंग मजबूत शैक्षणिक मानकों और देश के संस्थानों की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाती हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री डी पंडित ने विश्व QS रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए JNU के शिक्षकों और छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नारी शक्ति फॉर विकसित भारत के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। सरकार ने कहा है कि देश की सभी तेल रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं और सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने यह भी बताया है कि घरेलू LPG सिलेंडरों की आपूर्ति पूरे देश में सामान्य है और LPG वितरकों को कमी की सूचना नहीं है। भारतीय मिशन और दूतावास भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। क्षेत्र से अतिरिक्त उड़ानों के कारण हवाई संचालन में सुधार हो रहा है और 28 फरवरी से अब तक लगभग 4,50,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG को लेकर जानकारी दी है कि राजधानी में LPG की कोई कमी नहीं है और उसकी आपूर्ति को 20 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इसके अंतर्गत अब प्रतिदिन 1,800 की जगह 4,500 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार ये फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग और जरूरी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के गैस मिलती रहेगी। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल बचा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 443 ग्राम अफीम बरामद किया है। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सर्वोदय विद्यालय में 1,100 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दिल्ली में 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के अंतर्गत तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुकुल परम्परा को भारतीय संस्कृति की आधारशिला बताया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विश्व QS रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।